पदाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सभी भक्त लोग को हम स्वागत करते हैं और कृतज्ञता प्रदान करते हैं क्योंकि आप लोग अवसर दिए हैं कुछ भगवान की कथा बोलने के लिए। मुझे बहुत आनंद लगा, मैं पहली बार आ रहा हूँ हैदराबाद, आपका ऐसा स्पेशल कृष्ण के लिए मंदिर है ये बहुत अच्छा लगा मुझे। कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? भगवान है, भगवान है। जैसे शिव है, ब्रह्मा जी है, दुर्गा है, काली है, उनको देवता बोला जाता है। कृष्ण देवता नहीं है, भगवान है। गीता में हम जब गीता पढ़ते हैं ना, इसमें पता चलता है। आप देखिए, आप लगा है ना विश्वरूप, विश्वरूप का फोटो लगा है, इसमें गणेश है, देख लीजिए गणेश है, कृष्ण दिखा रहा है कि मैं भगवान हूं, मेरा पास सब देवता है, सब देवता है, देख लीजिए कौन कौन है, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, सब देवता है। जैसे पेड़ है ना, पेड़ का नीचे में पानी दे देना, इसका मतलब क्या है? पूरा पत्ता है, उनका शाखा है, सब पानी पा जाता है। इसे भगवान को जो पूजा करते हैं, कृष्ण को जो पूजा करते हैं, सबका पूजा हो जाता
है।
क्यों कृष्ण बोल रहे हैं गीता में, देखो मेरा पास सब देवता है, अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वज न मे विदुसुर गणाम प्रभवन्न महर्षया अहम आदि देवानाम महर्षिणाम च सर्वज, मैं सबका आदि हूं। गीता पढ़ रहे हैं ना, देख लीजिए भर्ष, मैं सबका आदि हूं, मैं प्रारंभ हूं। तो गीता, जो गीता आप पढ़ रहे हैं ना, भगवान कृष्ण कब आए, कौन सा युग में आए? द्वापर में आए। सत्य में कृष्ण थे कि नहीं?
सत्य में कृष्ण उन्हें
भगवान सत्य में भी थे। जैसे सूर्य, सूर्य है ना, सूर्य रात में नहीं रहते हैं, हमको दिखाई नहीं देता है, दिन में दिखाई देता है। इसका मतलब रात में दिखाई नहीं देता है मतलब सूर्य नहीं है, ऐसा नहीं है, सूर्य है। भगवान ऐसे सत्य युग में थे, और वृंदावन था ना, ध्रुव महाराज सत्य युग में कहां गए थे तपस्या करने के लिए? पुण्यम मधुवनम यत् नित्यदा सानिध्य हरे। ध्रुव महाराज, नारद मुनि ध्रुव महाराज को भेज रहे, तुम जाओ वृंदावन, वो तो सत्य युग की बात है। तो वृंदावन कहां आया जब कृष्ण नहीं था? कृष्ण सब सब युग में है, वो प्रकट होते हैं द्वापर में। जैसे संडे है, संडे बोलते हैं ना, संडे कब शुरू हुआ?
संडे
ये संडे चला गया, अभी फिर संडे आएगा। ऐसे युग ऐसे चलता है, भगवान ऐसे हैं, भगवान सब समय है। हम नहीं मानना चाहिए कि भगवान द्वापर में आए थे, इसे पहले नहीं थे और अभी नहीं है। संडे में ऑफिस क्लोज हो जाता है ना, मंडे में खोलता है। अभी कृष्ण इस ब्रह्मांड में नहीं है, दूसरे ब्रह्मांड में है। ऐसे भगवान सब समय क्या लिखे गीता में, भगवत गीता में, परित्राणाय साधु नाम देन विनाशाय च देन तारपरे परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय। एक शब्द है, वो शब्द को समझना चाहिए। संभवामी जुगे जुगे, जन्म नहीं होता हूं मैं, जन्म नहीं होता हूं, संभव होता हूं। संस्कृत पढ़ना चाहिए। आप लोग का देश में तो सब पंडित है, जितना हमारा आचार्य है ना, सो आपका देश है, दक्षिण देश है। इधर ब्राह्मण शुद्ध है, सब है। साउथ इंडिया है ना, वो आचार्य लोक स्थान है, देवता लोक स्थान है, देव भूमि है। जैसे सूर्य को सूर्य जन्म नहीं लेते हैं, सूर्यदेव जन्म नहीं लेते हैं, वो आविर्भाव संभव होते हैं। संस्कृत संभव का मतलब वो खुद ही आविर्भाव होते हैं। जुगे जुगे जैसे सूर्य अस्त हो जाते हैं, भगवान ऐसे लीला इधर संग करते हैं, फिर दूसरा ब्रह्मांड से शुरू करते हैं। अरे जितना संसार में जितना शास्त्र है, भगवान डायरेक्ट एक शास्त्र बोले हैं, वो क्या है? भगवद गीता। और दूसरे जो है, मुनि लोग ऋषि लोग भगवान का लीला लिखे हैं, लेकिन भगवान डायरेक्ट भगवद गीता बोले हैं। उड़िया में, उड़िया हम उड़ीसा उड़ीसा आदमी हैं, उड़िया में कहावत है अगर आपको अच्छा नहीं लगे या नहीं लगे, नीम पीता खाना चाहिए, नीम का जो पत्ता है ना उसको खाना चाहिए, अच्छा लगे या नहीं लगे, यू शरीर के लिए हितकारी है। और गीता समझो या नहीं समझो पढ़ना चाहिए, उड़िया में ऐसा कहावत है। क्योंकि ये जो भगवान बोले हैं ना, भगवान का शब्द हम बोल रहे हैं, सुनने से बोलने से पवित्र हो जाते हैं। जो समझ लेते तो वो तो आगे बढ़ते हैं, जो नहीं समझते भी फिर पवित्र हो जाते हैं।
भगवान
आप देख लीजिए पहले जमाने में, जैसे प्रभु जी है, आप लोग पुराने जो है, आप लोग के टाइम में आपके पिताजी कितना गीता पढ़ते थे, विष्णु सहस्र नाम पढ़ते थे, तब तो प्रेम था ना, भाई भाई से प्रेम था, पिता माता से प्रेम था, घर में पति पत्नी से प्रेम था, ममता था। अभी कुछ नहीं है, पैसा कमाते हैं और फाइडी। अभी पैसा का कमी नहीं है, दुख ज्यादा है। उस समय लगता था दुख ज्यादा है, पैसा कमी है, लेकिन आनंद था। पांच भाई मिलकर खाते थे, बैठते थे, प्रेम था। गांव का कोई पुलिस स्टेशन नहीं आता था उस समय, गांव में सब समाधान होता था। अभी पति पत्नी दोनों पुलिस स्टेशन आ रहे हैं ये गीता को छोड़कर। ये भारतवर्ष का बहुत बड़ा दुख। हम लोग, हमारा जो संस्कृति, मुझे बहुत अच्छा लगा, अब इतना बड़ा मंदिर कृष्ण के लिए बोला, जैसे हम लोग बना रहे हैं, हमारा काम है कृष्ण को पूजा करना। अब इसका मतलब है कृष्ण कॉन्शियसनेस, सारा दुनिया में प्रचार करना है कृष्ण भगवान है और गीता का वाणी प्रचार करना है और उनका नाम मंत्र हरे कृष्ण, बस ये तीनों काम हमारा है। कृष्ण मंदिर बनाना है, गीता प्रचार करना है और नाम करना है कृष्ण का नाम। लोग सुख में रहेंगे, हमारा क्या है, लोग सुख में रहेंगे। लोग दुख में क्यों है? आप, हम इतने लोग बैठे हैं ना, सबको पूछो दुख का कारण अलग अलग होगा। जितना लोग हैं उनका दुख का कारण अलग अलग है, सबका दुख का समाधान नहीं कर सकते हम। किसका पति पत्नी अच्छा है, लड़का अच्छा नहीं है। किसका लड़का अच्छा है, पति पत्नी अच्छा नहीं है। किसका सास ससुर अच्छा नहीं है, किसका हेल्थ प्रॉब्लम है, किसका मॉनिटरी प्रॉब्लम है, किसका गांव का प्रॉब्लम है, तो कितना हम समाधान कर सकते हैं, कितना कितना लोग को हेल्प कर सकते हैं। तो वो चाहेंगे ना, भगवान चाहेंगे ना, सबको सुख में रख सकते हैं, उनके पास पावर है। इसलिए हम लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तुम भगवान का शरण लो। गीता का सार क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य, बस ये कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम लोग का काम है ये, तुम भगवान का शरण जाओ, तुम्हारा दुख चला जाएगा। हम इतना ही दिशा दिखा देंगे, इस दिशा में जाओ, दुख दूर नहीं कर सकते किस काम, हम क्या कर सकते, हम तो जीव है। हम लोग लोग को ये नहीं सिखाते कि तो आप सब बाबा जी बन जाओ, नहीं ऐसे नहीं है। आप शादी करना है तो शादी करिए, आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करिए, लेकिन कृष्ण को पास में रखिए, नहीं तो दुख नहीं जाएगा। नहीं तो जितना कर्म कर रहे हो इसका फल कुछ नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। ये हमारा टीचिंग है। మ్యారేజ్ చేసుకోవచ్చు, వ్యాపారం చేయొచ్చు, అన్ని చేయొచ్చు, మీ కర్మలన్నీ కూడా చేయొచ్చు, जैसे वो ब्लैक बोर्ड है ना, इधर ब्लैक बोर्ड है, इसमें हम जीरो लिखेंगे, 1000 जीरो लिखेंगे, 1000 जीरो लिखेंगे, इसका क्या वैल्यू है? कुछ नहीं, ठीक है। 1000 जीरो को हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, इसका वैल्यू क्या है? जीरो होगा कि नहीं? और क्या होगा? एक कुछ नहीं होगा, वही जीरो है। कर्म ऐसा है, जितना सुंदर से करो, इधर फ्लैट बनाओ, हैदराबाद में फ्लैट बनाओ, दिल्ली में फ्लैट बनाओ, आईएएस अफसर बनो, जितना बड़ा बिजनेस करो, वो सब जीरो हो जाता है लास्ट में। तब बोलते हैं आपको सुख मिला, संसार में कुछ नहीं है। बोलते लास्ट कुछ नहीं है, जमीला है, जमीला है। क्यों? जीरो का पास वन नहीं है। जीरो का पास वन नहीं, इसलिए उसका वैल्यू जीरो है। जब जीरो का पीछे वन रख जाता है, सब जीरो का मूल, सब जीरो का वैल्यू कितना? 10 गुना बढ़ता जाता है। जीरो है, इसको वन लगा लीजिए, 10 हो गया। एक जीरो लगा लीजिए, कितना हो गया? 100 हो गया। और जीरो लगा लीजिए, 1000 हो गया। जीरो का कुछ वैल्यू नहीं था, अभी एक की वजह से 10 गुना हो रहा है। ऐसे कर्म का कोई मूल्य नहीं है, कर्म का फल दुख होता है। और इसे पीछे भगवान लग जाता है ना, वो कर्म 10 गुना सुख देता है। इसको समझाना है लोग को, और कुछ नहीं। गीता का वाणी यही है, कर्म जोगी बनो। कर्म कर रहे हो, कृष्ण को पास में रखो तो 10 गुना सुख मिलेगा, और कृष्ण को छोड़ देते हो 10 गुना दुख मिलेगा, वो जीरो है। वही होता है।
सुनना लगती बैठा सुनना पकड़ बैठते सुनना बैठते इनको सुनना बैठते अंटे पकड़ पेटना 10 अट्ला మన కర్మలు చేస్తూ భగవంతుడికి అర్పించాం అనుకోండి, అదేమవుతుంది? 10 సుఖం వస్తుంది. అదే కర్మ చేస్తూ భగవంతుడికి అర్పించలేదంటే 10 దుఃఖం వస్తుంది. మీకు సుఖం కావాలా, దుఃఖం కావాలా? సుఖం కావాలంటే మీరు చేసే కర్మలన్నీ కూడా భగవంతుడికి అర్పించండి.
ఆజకల్ జో లడ్కా లోక్ హై శాదీ నహీ కియే నా తబ్ సోచతే సుఖ హై, ఏక్ బార్ అబ్ శాదీ కర్ లీ హై నా, पता चलेगा कितना दुख आ जाता है कि नहीं? भगवान गीता में, आप गीता पढ़ते हैं ना, गीता में देख लीजिए भगवान क्या लिखे हैं, माम उपेत्यम पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम। इधर कुछ नहीं है, इधर जो है टेम्पोररी है, और इसका फल दुख मिलता है। माम उपेत्य पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम नप्नुमंती महात्मानम संसिद्धि परमागति। सन्यासी लोग मुझे प्राप्त करते, परम गति प्राप्त करते, मेरा भक्त बनो, भगवान का इच्छा यही है। नहीं तो इधर दुख है, कुछ भी कर्म करो अंतिम में दुख मिलेगा, टेंशन। अभी दुख नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिप्रेशन, टेंशन, यही दुख है। संसार दुख है, भगवान को पकड़कर संसार करेंगे, दुख नहीं है, सुख है, वन है, भगवान वन है, और सब संसार में सब कर्म जीरो है। ये हमको लोग को सिखाना है।
కార్యక్రమాలు చేసినట్లయితే సుఖం వస్తుంది, ఇదే మనం ప్రచారం చేయాలి.
गीता में और एक श्लोक है, आप गीता पढ़ रहे ना, मैं गीता से कोट्स कर रहा हूँ। नस्ति बुद्धि रजुक्तस्य न च दुक्तस्य भावना न च भावयर्षन्ति असंतस्य। भाई जी को सब पता है, प्रभु जी को सब पता है, वो बोल रहे हैं मेरे साथ साथ। देख लीजिए उसका वर्ष क्या बोल रहे हैं। नस्ति बुद्धि अजुक्तस्य, भगवान बोल रहे जिसका बुद्धि बुद्धि में मैं नहीं हूं, मेरा चिंतन नहीं करता है। न च दुक्तस्य भावना, जिसके चेतना में मैं नहीं हूं, उनका सुख नहीं है। जिसका सुख नहीं है क्या शांति उनको जीवन में मिलेगा? असंतोष, जिसका शांति नहीं है उसका क्या सुख मिलेगा? शांति का मतलब माइंड इधर उधर जाता है, भागते हैं, भगवान को चिंतन नहीं करते। इसलिए भगवान का नाम करना है, भगवान का वाणी सुनना है, कर्म भी करना है, ये हमारा लक्ष्य है।
ఎప్పుడైతే భగవంతుడి నామము భగవంతుడి యొక్క గీత యొక్క విశేషాలు తెలుసుకున్న వాడికి మాత్రమే సుఖం కలుగుతుంది. ఎప్పుడైతే భగవంతుడి నామం తీసుకుంటామో అప్పుడే మనకు సుఖం అనేది కలుగుతుంది.
जिनका बुद्धि, भगवान उधर बोल रहे हैं ना, जिनका बुद्धि स्थिर नहीं है मेरा चरण कमल में, जिनका चित्त वृत्ति में मैं नहीं हूं, उनको शांति नहीं मिलता। क्षण के लिए भी, थोड़े थोड़े पल के लिए शांति नहीं मिलता है। जग जाता है आदमी टेंशन, सोता है टेंशन, क्योंकि भगवान चिंतन नहीं करते। पहले जमाने में खेती बाड़ी था, ये मशीन था क्या? बैल में खेती करते थे, कुछ मशीन नहीं था, एक इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, बिजली नहीं था, आराम से लोग सोते थे, आराम से खाते थे। और जब शादी होता था, लड़के लोग कितना गहना लेकर जाते थे, अभी इमिटेशन लेते हैं। सुख नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि भगवान को छोड़ दिए, कृष्ण को छोड़ दिए। और आप देखे है ना, अभी लोग इतना श्रम करते हैं खाने के लिए, और क्या है, सिर्फ खाने के लिए इतना श्रम करते हैं ना। दो इतना कठिन श्रम करने का दो कारण होता है, बाहर लोग को तो पता नहीं, अच्छा से खाना है, अच्छा से, और दो स्थान पर झगड़ा है। खाने बैठते हैं झगड़ा शुरू हो जाता है, और सोने बैठते हैं रात में झगड़ा चलता है। भगवान को छोड़ दिया है ना, मन अशांत है, कोई भी खाता है टेंशन में खाता है, सोता है टेंशन में, तो क्या वैल्यू है जीवन का, क्या मूल्य है? जितना फाइटिंग है वो खाने में, सोने खाने के टाइम में और सोने के टाइम में। और सुख क्या है? ये भगवान को छोड़ देने से जीवन बिगड़ जाता है, पूरा सब दिशा में बिगड़ जाता है पूरा। इसलिए हमारा जो संस्था का गुरु थे प्रभुपाद जी थे, वो बंगाल से थे, और बहुत बड़ा स्कॉलर थे, विदेशी स्कूल से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। उनका गुरु जो थे वो ब्रह्मचारी थे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर। उनको बोले तुम विदेश जाओ, क्योंकि भारतीय लोग अभी गीता नहीं पढ़ रहे हैं। ये भारतीय जो ड्रेस है ना, हमारा जो ड्रेस है, धोती पहनना, साड़ी पहनना, ये सब भारतीय संस्कृति हम छोड़ रहे हैं, गीता हमको अच्छा नहीं लगता है। तो उनको भेजा था तुम विदेश जाओ, विदेश में विदेशी लोग को भक्त बनाओ, वो गीता पढ़ेंगे ना, तो भारतीय लोग सोचेंगे हमारा गीता का कितना वैल्यू है, विदेशी लोग पढ़ रहे हैं। तब प्रभुपाद जी गए थे सिर्फ गीता का वाणी प्रचार करने के लिए। हमारा काम यही है, गीता का वाणी प्रचार करो, हरिनाम प्रचार करो, यही है, और कृष्ण का पूजा करो। गीता का सार क्या है?
गीता सारांश मांगे।
गीता का सार दो श्लोक है।
गीता सारांश दो श्लोक
मन मना भवो मद भक्तो मज्जाजी मंग नमस्कुरु, एक वर्ष है ना, मेरा भक्त बन। गीता हम पढ़ रहे हैं कृष्ण का भक्त होने के लिए सार। कोई गीता नहीं समझता है लेकिन कृष्ण को पूजा करता है, कृष्ण का नाम करता है, कृष्ण का भक्ति करता है, इसका मतलब गीता का सब तत्व उनको पता है। ये सार
गीता सारांश
तो हम लोग का ही कोई बोलता है मेरा समझ में गीता नहीं आया, ठीक है तुम भक्त बन जाओ सब समझ, ये तो सार ही है ना, भक्त बनना ही सार है। और अक्षर क्या है? सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकम, इस छोटा काम में सब कुछ छोड़ देना, सब छोड़ना है। भगवान तो बोल दिए सब छोड़ दो मेरा शरण लो, क्या हम घर छोड़ देंगे, बाल बच्चा को छोड़ देंगे, बिजनेस छोड़ देंगे? समझना है गीता को। गीता का सार क्या है? शरण जाना पहला काम है। मामेकम शरणम व्रज, भगवान का शरण जाओ, छोड़ना काम ठाकुर जी करेंगे। हम छोड़कर शरण नहीं जा सकते हैं, हमको शरण जाना चाहिए। कृष्ण मैं आपका हूं, आपका पूजा करूंगा, आपका नाम करूंगा, आपका सेवा करूंगा, आपका शास्त्र जो है पढ़ाई करूंगा। छोड़ना काम जो है ना वो ठाकुर जी करेंगे। कैसे छोड़ना है? हम छोड़कर शरण नहीं जा सकते, कभी नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे अर्जुन है, अर्जुन का पास बल था, बुद्धि था, अस्त्र था, लेकिन युद्ध कर रहे थे कृष्ण का शरण जाकर, युद्ध कर रहे थे, अपना बुद्धि से युद्ध नहीं कर रहे थे। कृष्ण जैसे बोल रहे थे ऐसे कर रहे थे। ऐसे हम लोग का पास धन है, ज्ञान है, बुद्धि है, बल है, लेकिन भगवान का शरण जाकर अगर संसार में हम युद्ध करेंगे, कर्म करेंगे ना, तो सफल मिलेगा। शरण नहीं जाते, जो कर्म करते हैं उसका बल दुख हो जाता है।
అర్జునుడు ఎంత ఆయన ఎవరి భగవంతు శరణాగతి పొంది యుద్ధం చేస్తున్నాడు,
तो गीता का वो दो सार है, एक पहला है हमको भक्त बनना है, दूसरा है भगवान का शरण जाना है। शरण जाना का मतलब क्या है? कृष्ण मुझे कुछ पता नहीं है, मैं छोटा हूं, छोटा बच्चा जैसा हूं, आप मेरा जिम्मेदार लीजिए, आप मुझे बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, बल दीजिए, मेरा जिम्मेदार लीजिए, मैं कर्म करता हूं लेकिन मुझे कुछ पता नहीं, ये है शरण। जैसे आप देखिए ना, ट्रक ट्रक का ड्राइवर जो होते हैं, आंध्र ट्रक उड़ीसा जाता है, मैं देखा हूँ, बड़ा बड़ा ट्रक सब आम वगैरह लेकर जाता है। जो ट्रक में ड्राइवर होते हैं, पहले जब ट्रक में चढ़ते हैं वो एक्सपर्ट ड्राइवर है, लेकिन पहले भगवान का शरण जाते हैं, स्टेयरिंग छूते हैं ना, वही रोड पर जीवन भर चलाते हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर भगवान का शरण हम नहीं जाएंगे एक्सीडेंट कहां हो जाएगा। डॉक्टर है वो कितना हार्ट ऑपरेशन करते हैं, लेकिन पहले सर्जरी करने के लिए जाते हैं ना, हाथ जोड़ कर जाते हैं, कितना ऑपरेशन करके सक्सेस किया है, लेकिन ये पेशेंट का ऑपरेशन करेगा वो जिएगा कि नहीं, उनका हाथ में नहीं है, वो कर्म कर रहा है, शरण पहले भगवान का जा रहा है, एक्सपर्टनेस इधर काम नहीं करेगा। कितना तुम दक्ष हो, भगवान से शरण नहीं लेते हो ना, कुछ भी हो सकता है। पहले शरण जाकर कर्म करना है, हमारा ये इंडिया सिस्टम था, इंडियन सिस्टम ऐसा था, अभी तो सब भूल गए हैं, सिर्फ पढ़ाई करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पैसा कमाना है, शादी करना है, उसके बाद शादी कर देते फिर बर्बादी हो जाते हैं, बस फिनिश, फाइटिंग डिवोर्स, ये है जीवन। अभी पहले आप देखें डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन है, पहले जमाने में कोई भी डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन ऊपर देख लीजिए क्या लिखा था, ओम नमः शिवाय हर जगह में उस भगवान का शरण जाते थे, जो जिसका भक्त है उनका नाम लिखते थे, वो प्रेस्क्रिप्शन में लिखते हैं मेडिसिन, पहले ऐसे कलम मैं देखा हूं, वो पेन को ऐसे लगाते हैं, उनका इष्ट को स्मरण करते हैं, तब तो प्रेस्क्रिप्शन, शरण जाकर सब कर्म करते हैं। आजकल तो हम मशीन मैन हो गए हैं, अभी भगवान को छोड़ दिए, इसीलिए दुख, सब लोग दुख में परेशानी में। भगवान हमको यही सिखा रहे गीता में, मेरे शरण जाओ, और हमारा जो स्कंद है हमारा एक 1.0 है, गीता का वाणी है, भगवान बोले उनका शरण जाना है। कृष्ण का शरण जाना का मतलब गणेश का शरण जाना, शिव का शरण जाना, सबका शरण जाना, वो पेड़ का मूल है ना, जो भगवान का शरण ले जाते हैं हम सबका शरण गए। हम कृष्ण को पूजा करते हैं, जगन्नाथ जी को पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का नाम करते हैं, और भगवान का प्रसाद लेते हैं, और गीता पढ़ते हैं, और इसको प्रचार करते हैं। आप भी कर्म कीजिए, घर में रहिए, बाल बच्चा है, सब कुछ है, बिजनेस कीजिए, लेकिन भगवान का भक्त बनिए, सुख में रहिए। नहीं तो सुख नहीं जीवन में।
కృష్ణుడిలో అందరూ ఉన్నారు అనమాట, గణేష్ ఉన్నాడు, శివ అందరూ ఉన్నారు అనమాట. అంటే కృష్ణుడి కోసం ఎప్పుడైతే సేవ చేస్తామో అందరికీ ఆ సేవ, అందరికి సేవ చేస్తున్నారు. సో మీరు కూడా డబ్బులు సంపాదించండి, వ్యాపారం చేయండి, అన్ని చేయండి, కానీ కృష్ణుడితో శరణాగతి పొంది చేయండి, కృష్ణుడు శరణి పొంది చేయండి. ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఆనందం.
ठीक है, मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक स्टोरी बोल के मैं खत्म करूंगा। एक स्टोरी है, उसके बाद मैं विश्राम दूंगा। देखो, एक को छोड़ देने से जैसे जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, कृष्ण को छोड़ देने से जितना कर्म करते सुख नहीं। इसी पर एक मैं छोटा स्टोरी बोलूंगा। अहं ही सर्वज्ञानां भुक्ता च प्रभुरेव च। जितना कर्म कर रहे हूं, जितना यज्ञ कर रहे हूं, मैं भुक्ता हूं, मैं मालिक हूं। अगर मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा तुमको सुख नहीं मिलेगा, भगवान बोल दिए गीता। पानी कौन पैदा किया है? पानी, पानी
नील
साइंटिस्ट,
साइंटिस्ट नील तैयार।
हवा कौन पैदा किया है? मिट्टी कौन पैदा किया है?
मट्टी।
आत्मा किसका है?
ये
आत्मा पिता का है क्या? तो पिता का आत्मा है तो पिता क्यों मर जाता है, हमको क्यों नहीं जिलाता है? भगवान बोल रहे हैं, अहम आत्मा गुड़ा की सर्वभूताश्रयस्त मैं आत्मा हूं। ये भूमि, अब अनल, वायु, ये सब मेरा है, सब भगवान का है। और भगवान को छोड़कर जो करेंगे वो जीरो है, इसीलिए संसार में दुख मिल रहा है। तो ये गांव में एक साधु रहता था, वो दूसरे दूसरे गांव में जाते हैं, प्रवचन करते हैं, गीता का प्रवचन करते हैं। अरे साधु लोग जान जाते हैं ना, पहले जमाने में गांव का लोग उन प्रवचन का बाद उनको बोलते हैं, हमारे घर में बाबा जी आ जाओ, थोड़ा मैं आपके लिए खाना बना लूंगा। तो गांव में प्रवचन खत्म हुआ, सब लोग उनको बुलाए, बाबा जी हमारे घर में आओ, बाबा जी हमारे घर में आओ। सब लोग जो बुलाए तो बाबा जी ने, वो तो उनको डर लगा, सब बुला रहे किसके घर में मैं जाऊंगा। तो बाबा जी ने बोले, मैं उनका घर में जाऊंगा जो सत्य बात बोलते हैं, उनका घर में मैं जाऊंगा, उनका घर में भोजन करूंगा। तो बोले जो सत्य बोल रहे हैं उनका घर में खाऊंगा, तब तो कोई नहीं बुला है। तो कोई नहीं बुला है। लेकिन एक धनी आदमी था, बहुत धनी था, जमींदार था, वो बोला, वो हाथ उठाए, बोले मैं सत्य बोलता हूँ, हर समय सत्य बोलता हूँ, आप हमारा घर में आइए। तो गांव का लोग बोले, नहीं वो चोर है, वो झूठा बोल रहे हैं, वो सबसे ज्यादा पैसा कमाए हैं, बहुत धनी है, वो झूठा बोलता है, वो बोल रहे हैं सत्य। और साधु तो बीच में पड़ गए, गांव का सब आदमी बोल रहे हो झूठा बोल रहा है, लेकिन वो बोल रहे नहीं मैं सत्य बोल रहा हूँ बाबा, तुम मेरा घर में आ जाओ मैं प्रमाण दे दूंगा मैं सत्य बोलता
हूँ।
तब गांव लोग ने बोले बाबा उनको इधर परीक्षा करो, इधर ही परीक्षा करो हमारे सामने, तब तो पता चलेगा ये सच्चा बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो पहले साधु आपको ये क्वेश्चन को याद रखना है, समझ रहे हैं ना, मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा उसको याद रखना है, उसको आंसर मिलेगा। पहले साधु बोले तुम्हारा कितना लड़का है, जमींदार को बोले तो वो बोले मेरा एक लड़का है, और गांव का लोग हल्ला करने लगे बाबा उनका तीन लड़का है, लेकिन वो बोल रहे एक लड़का, ये झूठा देखो सामने सामने झूठा बोलता है। तो साधु डर गए, देखो गांव का लोग को पता नहीं है कितना लड़का है, ये तो झूठ बोल रहा है, फिर लेकिन वो तो बोलता है नहीं सत्य में बोल रहा हूं, हमारा घर में आइए मैं प्रमाण कर दूंगा, वो ऐसे बोलता था मेरा घर में आइए मैं प्रमाण कर दूंगा। तो वो साधु बोले अच्छा दूसरा क्वेश्चन मैं टेस्ट करूंगा, बोले तुम्हारा कितना पैसा है, तुम्हारा कितना पैसा है, तो जो धनी आदमी बोले मेरा जीवन में मैं 500 रुपया कमाया हूं, 500 रुपीज। गांव का लोग हल्ला करने लगे, उनका 3 मंजिल का बिल्डिंग है, 3 स्टार बिल्डिंग है, वो बोल रहे 500 रुपीज उनका है, देखो कितना बड़ा चोर है, झूठा बोल रहे हैं। तो बाबा जी का तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। थर्ड क्वेश्चन किए, अच्छा तुम्हारा उम्र कितना है, तो बोल रहे मेरा उम्र 10 साल है। तीन लड़का है वो बोल रहा है 10 साल। तो गांव का लोग बोले बाबा तुम देखो ये कितना बड़ा झूठा आदमी है। तो बाबा का समझ में नहीं आया था वो क्यों ऐसे बोल रहे हैं, सामना सामना झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं मैं सत्य सहरसा में सत्य बोलता हूं। तो बोले गांव का आदमी का साथ बाबा हमारे घर में आ जाइए मैं आंसर दे दूंगा मैं झूठा बोल रहा हूं या सत्य बोल रहा
हूं।
तो गांव के आदमी गए और साधु भी गए घर का सामने, पहले क्वेश्चन क्या था कितना लड़का, उनका आंसर बोले बाबा मैं आंसर दे रहा हमारा कितना लड़का है। तो तीनों लड़का घर में थे, उनका 3 लड़का है, लेकिन वो क्या बोला था, तो पहला लड़का को बोला है बड़े लड़का, वो बड़े बेटा साधु आए थोड़ा पानी लेकर आओ, वो बोल रहे मैं बिजी हूं मुझे ऑफिस जाना है, वो नहीं आए।
पड़ మంచి కాల్ పడుతుంది చాలా బిజీగా ఆఫీస్ చెప్తున్నా.
और सेकंड बच्चे को जो बीच वाले हैं उनको बुलाए, तुम आ जाओ बाबा जी आए हैं, थोड़ा पानी लेकर आओ, उनका पांव चरण कमल धोना है, मैं नाइट ड्यूटी किया हूं, मैं टायर्ड हूं, मैं नहीं उठ सकता हूं। तब जो छोटा बच्चा था उनको बुलाए, छोटा बच्चा को बुलाए, बेटा बाबा जी आए हैं, थोड़ा पानी लेकर आओ, उनको प्रणाम करो। छोटा बच्चा थोड़ा पानी लेकर आए, बाबा जी को प्रणाम किए। तब महाजन ने, धनी ने बोले साधु को, मैं कितना कितना बोला था, मेरा कितना लड़का है, देखो को तीन जन्म लिए हैं लेकिन एक लड़का मुझे मदद कर रहा है भगवान के काम में, इसलिए मेरा एक लड़का। साधु बोले हाँ मैं समझ लिया, तुम सत्य बोल रहे हो, लेकिन मुझे डर लग रहा, मुझे तो ये झूठ लग रहा है कि तुम्हारा तीन मंजिल का बिल्डिंग है, आप बोल रहे हो कितना पैसा है, 500 रुपया, ये कैसा है? उनका जमींदार, जमींदार लोग रखते हैं ना, अकाउंटेंट रखते हैं, वो बुलाए अकाउंटेंट, आ जाओ इधर, खाता लेकर आ जाओ। वो खाता लेकर आ गए। तब वो जो अकाउंटेंट है वो लेकर आए, उनका जो खाता वगैरह है, उनको बोले देखो मेरा जीवन में मैं ठाकुर की सेवा के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, भगवान की सेवा के लिए मैं कितना पैसा दिया हूं। वो कैलकुलेट करके बोले महाजन 400 से 500 रुपया आप जीवन भरे दिए हैं। तो साधु को बोले इतना है मेरा पैसा है, कमाए इतना है 500 रुपीज, वो जो है ना वो तो ऐसा ही रहेगा, वो मेरा काम में नहीं लगेगा, इसलिए मेरा कमाई 500 रुपीज है, जितना मैं भगवान को दिया हूं। तब साधु समझ गए हाँ ठीक है। उनको एक पता है, साधु समझ गया, वो एक पता है, कृष्ण को पता है, ये जो आंसर दे रहे हैं ना भगवान को जोड़कर आंसर दे रहे, जो लड़का भगवान की सेवा में लग रहे हैं वही लड़का है, जो पैसा भगवान के काम में लग रहे हैं वो पैसा है, वो कमाया हुआ धन है। बोले हाँ मेरा तो ये समझ में आ गया, लेकिन एक समझ में नहीं आ रहे हैं, तुम्हारा उम्र 10 साल कैसा है, तुम्हारा लड़का का तो उम्र इतना, तीनों लड़का है। तब बोले तुम्हारा पत्नी को बुलाओ। जब पत्नी जब आए तो साधु बोले तुम्हारी उम्र कितना है, वो बोल रहे मेरा 60 साल के। तो जो पत्नी का 60 साल है, पति का तो ज्यादा होगा ना, तो साधु बोले तू पत्नी 60 है, तुम्हारा तो 65 होगा, 62 होगा, तुम 10 साल कैसे बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो? बोले मैं आंसर दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तब बोले जो जमींदार लोग का पास जो रहते हैं ना, जो लोग क्या बोलते हैं, उनका असिस्टेंट जो रहते हैं, उनको बुलाए, वो लोग सब प्रेजेंट जैसे रखते हैं, हमारा जमींदार कितना दिन तीर्थ भ्रमण में गए, कितना दिन भागवत कथा सुनने में गए, कितना दिन भगवान की सेवा करने में, सब दूसरा दूसरा तीर्थ जाते हैं, वो कैलकुलेट करके बताए कि आप 65 साल में दस साल भगवान के काम में व्यतीत किए हैं, तो वो बोले, जमींदार बोले, यही मेरा उम्र है और जितना दिन जिया हो ना, ये तो बेकार है, मरना की बराबर है। साधु उनका चरण कमल में गिर गए। तुम ग्रस्त हो लेकिन तुमको पता है एक कृष्ण पता, तुम कृष्ण। साधु बोले, मैं इतना पढ़ाई किया हूं लेकिन तुम्हारा रियलाइजेशन है, मैं सिर्फ क्या हूं, पढ़ाई किया हूं, लेकिन तुम्हारा क्या है, आत्मज्ञान आ गया। सब कमाई करते हो लेकिन सत्य क्या है तुमको पता है। हम गीता का सार यही है, भगवान को भक्त होना, भगवान का भगवान क्या है उनको पता होना, भगवान संबंध से कर्म करना, नहीं तो जीवन जीरो हो जाता है। हमारा कोई अंतर नहीं होता है, जैसे मैं शादी नहीं किया हूँ, वो सब शादी किए हैं। और प्रभु जी विदेश में नौकरी करते थे, फॉरेन में, अमेरिका में नौकरी करते थे, वो नौकरी छोड़कर चले आए। उनको इतना अच्छा लगा कृष्ण कि जीवन का मूल्य क्या है ना, एक है, वन है, जीरो को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भगवान के लिए कर रहे हैं, मंदिर बनाना, सब कर्म हम कर रहे हैं। आप मत सोचिए हम बैठते हैं आश्रम में, पैसा जाता है, खा पी कर सो जाते हैं, नहीं, हम खेती बाड़ी करते हैं, भगवान का कर्म करते हैं, भगवान को लेकर, वन को लेकर कर्म करते हैं। ये देखो, आप देख रहे हैं ना, हमारे पास मान लिया, गाड़ी में जाते हैं ना, बैठेंगे क्यों, कृष्ण को चिंता करो, कृष्ण क्या बातचीत करना है, फायदा क्या है, जब कर्म करना है कर्म करना है, कर्म के टाइम में भी स्मरण करना है, और जब बैठना है ठीक है, मालिक भगवान का नाम लेना है, मन में शांति मिल जाता है, एक को याद करते हैं, एक है, वन है, कृष्ण को याद करते हैं। कलयुग में कितना भी पढ़ो कितना भी करो, मन में कृष्ण रहना चाहिए, इसलिए सबसे आसानी उपाय है नाम करना, नाम रटना, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नस्ते व नस्ते व नस्ते गतिरन्यत। कलयुग में दूसरा गति नहीं है, दूसरा गति नहीं है, दूसरा गति नहीं है, सिर्फ हरि नाम। तो आप लोग का जब फुर्सत मिलता है, ठाकुर जी का पूजा करते हैं ना आप लोग, इसे छोटा माली रखना है, घर में बैठना है, आपको आपको पता चलेगा कितना शांति मिलता है। और कैसे जब करना है, हम इसे माला पकड़ते हैं, इसे माला पकड़ते हैं, ये तुलसी का माला है, हम तुलसी का माला जब करते हैं, जो हम दिखा लेते हैं तुलसी का माला, नहीं तो दूसरा दूसरा माला है, बेल का माला में जब करते हैं, हरे कृष्णा जो बोलते हैं ना उसको सुनते हैं, क्योंकि मन इधर उधर चला जाता है ना, ये जोग है, हम कृष्ण को सोचते हैं, जैसे भगवान कृष्ण इधर ना, हम ऐसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सुनते हैं। मन बहुत दुख देता है, सुख दुख का कारण मन होता है, मन एव मनुष्याण कारणम बंध मुख्य। गीता में ठाकुर जी बोले है ना, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथी बलबम दृढ़म, वो पागल है, ये पागल मन ही सुख दुख देता है, इसलिए नाम हम करते हैं। आप लोग भी नाम कर सकते हैं, हमारे पास में मंदिर है, प्रभु जी है, प्रसाद मिलता है, जाइए उधर बैठिए, नाम करें, नाम कीजिए। आप कभी कभी भक्त लोग को बुलाइए, नाम कीर्तन कीजिए, इसमें आपका भला ही होगा, आपको घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, बिजनेस छोड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन भगवान को एक को पकड़ना है। तो ठीक है, आप लोग को बहुत धन्यवाद है, आप इतना सुंदर मंदिर बना है और कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुश लग रहा है कि आप भगवान को कृष्ण को मान रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं। मैं देखा गीता का किताब है, अच्छा है, समझे या नहीं समझे गीता पढ़ना चाहिए। तो कभी फुर्सत मिलता इधर आ जाइए, माली का हरि नाम, कृष्ण का नाम, हम कृष्ण का नाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसको कीर्तन करते हैं, इसको जप करते हैं, राधा और कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप ऐसा ही कीजिए, मंदिर में कीर्तन कीजिए, मंदिर में आ जाइए, बैठिए शांति से, बैठिए गीता पढ़िए, हम लोग यही मंदिर में यही करते हैं, पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो आप लोग भगवान की भजन कीजिए, सेवा कीजिए, कृष्ण आपको कृपा करेंगे, आप सुख में रहेंगे, आपका बाल बच्चा भी सुख में रहेंगे, ये हमारा संस्कृति है। आप लोग आइए, कम में बन आइए, प्रभु जी लोग रहते हैं, और कभी कभी उनको बुलाइए, प्रभु जी भी आकर बोलेंगे, तेलुगु में बोलेंगे, प्रवचन देंगे, वो बहुत एजुकेटेड है, विदेश में नौकरी करते थे, वो भी कुछ नहीं बोलते, शर्म से कुछ नहीं बोलते हैं, अच्छा प्रवचन देते हैं, आप बुलाइए।
ठीक,
ठीक है ना। जिन लोग के पास बाली नहीं है आश्रम से ला सकते हैं, नहीं तो पहले काल से शुरू करना है। पूजा करते हैं कि नहीं, हर दिन पूजा करते हैं कि नहीं, जो पूजा करते हैं ना अंगूठी में करना है, ऐसे एक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, सेकंड ऐसे 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 करना है, नाम करके देखिए कितना शांति मिलता है। ठीक है, धन्यवाद, हरे कृष्ण जय।